संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 137 से 140 तक गाथाओं की टीका चल रही है। इस समय सार अनुशीलन में पेज नंबर 221 के जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ अपन ने पढ़ लिया था और उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करके अब आत्मख्याति टीका पढ़ेंगे अपन। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि यद्यपि जीव के रागादि भाव कर्मान वर्णा के कर्म रूप प्रणमन में निमित्त हैं, तथा कर्म का उदय जीव के आगामी रागादि भाव के होने में निमित्त है, तथापि जीव का रागादि भाव रूप प्रणमन पूर्णतः जीव का ही है, अकेले जीव का ही है, उसमें कर्म का कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार कारमान वर्णा का कर्म रूप प्रणमन पूर्णतः पुद्गल का ही है, अकेले पुद्गल का ही है, उनमें जीव का कुछ भी नहीं है। ये भाषा को लगा ना, अकेले उसका ही है, जीव का ही है बार बार, और निमित्त का निषेध नहीं कर रहे निमित्त से। अब हमारी अनादिकालीन निमित्ताधीन दृष्टि इतनी गहराई से जड़ पकड़े हुए है कि उस पर कितने ही प्रहार करो, यदि आप इतना कह दो कि हाँ निमित्त तो है, तो फिर बात वहीं की वहीं बात पहुंच जाती है। पर हम कहते हैं निमित्त नहीं, कुछ नहीं होता निमित्त में, मतलब तो फिर उन निमित्त का लोप होता है, तो वो तत्व ज्ञान के विरुद्ध बात हो जाती है, ये परेशानी है। मैं एक उदाहरण दूंगा तो आपको उसका अंदाजा लगेगा। जब हमारा ये पहला बैच शास्त्री होकर के निकला तो अंत में जो हम वो करते हैं ना समापन समारोह, तो सभी विद्यार्थियों को ये कहा गया कि भाई आपको 5 मिनट में 5 साल के अनुभव आपको सुनाने हैं, और आपने क्या पाया, क्या खोया, क्या उपलब्धि आपको लगती है कि समय आपका बेकार गया, ये पॉइंट दे करके। अब उसमें जतीश भाई, अभय कुमार जी, अभिमन कुमार जी, ऐसे सब लोग थे, और उसमें एक विद्यार्थी था जो इंजीनियर करके अपने यहां आया था, क्या नाम है, संतोष, दमोह में है आजकल। वो इंजीनियरिंग पास करने के बाद महाविद्यालय में भर्ती हुआ था, तो कितनी तीव्र रुचि होगी और कितना वो प्रतिभाशाली होगा इसकी कल्पना भी आप सहज ही कर सकते हैं। लेकिन जब उसने अपने 5 मिनट में बोला, 5 साल पढ़ने के बाद, ये कह रहा हूं, इस पर ध्यान देना मेरी बात पर, तो उसने ये कहा कि मैं रेल में जा रहा था, वहां मुझे पंडित भगवान दास जी मिल गए, थोड़ी उनसे बातचीत हुई, तो उनने मेरे से कहा कि यदि तुमको तत्व समझना है तो तुम जयपुर जाओ, वहां भर्ती हो, वहां विद्यालय खुला है, वहां तुम पढ़ना, तो तुम्हारी बात समझ में आई, और इसलिए मैं आया। बस निमित्त की इतनी ही बात थी कि पूरे 5 मिनट तक वो इनके इतने गीत गाता रहा। पंडित भगवान दास जी के उन्हें सिर्फ ये कहा था कि तुम जयपुर जाओ, बस खत्म, उन्हें कोई तत्व तो नहीं समझाया, कुछ नहीं। और यहां 5 साल पढ़ा और उस वक्त के सारे विद्यार्थियों को धर्म की सारी क्लासें न्याय वगैरह की मैंने ही ली, क्योंकि दूसरा कोई था ही नहीं क्या। तो उसने पूरे 5 मिनट में और कहीं किसी का कोई नाम नहीं लिया, गुरुदेव से लेकर मेरे तक और मेरे से लेकर आगे तक, वो पंडित भगवान दास जी ही उसके दिमाग में छाए हैं। और इसके साक्षी ये सबके सब लोग उस वक्त मौजूद हैं। तो उस वक्त भी ये बात आई कि भाई ये तो कि जब आदमी का टर्निंग प्वाइंट होता है जहां से, वो उसके दिमाग में इतना हावी रहता है कि वह सारा सर्वज्ञ का भी उपकार, गुरुदेव श्री का भी उपकार, किसी का भी उपकार एक तरफ है और वो टर्निंग प्वाइंट उसने सिर्फ इतनी कह दिया कि आप वहां पढ़ने जाओ, बस खत्म क्या। और वो बराबर अब समझ लो कि निमित्ताधीन कितनी जबरदस्त बुद्धि है कि 5 साल समय सार की कर्ता कर्म अधिकार, जीवा जीवा अधिकार पढ़ने के बाद, निमित्त उपादान पढ़ने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद भी वो वहां से हिल नहीं पाया। अब समझे निमित्त की कितना बलवान है, किधर है। हम ये नहीं कहते कि वो निमित्त के रूप में हमें याद करता, ये शिकायत नहीं है। वो तो उपादान तो गायब ही था कि मेरी पर्यागत ऐसी योग्यता थी, मेरा संसार का किनारा नजदीक आ गया था, तो मेरे को ऐसी बुद्धि सूझी कि मैंने अपना इंजीनियर होने के बाद में भी और अपना जीवन इसमें लगाया। तो उपादान की भी बात करता ना, और निमित्त में भी बाही से बाही निमित्त, क्योंकि गुरु भी तो निमित्त है ना पढ़ाने वाला, और वो पुस्तकें भी तो निमित्त है ना, क्यों कर्म का सह सहयोग सम भी तो निमित्त है ना। मैंने जिस निमित्त का कहीं दूर दूर तक भी उसका नाम नहीं आए है ना, तो उस निमित्त को उसके दिमाग में इतनी गहराई से भरा था है ना? तो मैंने उस दिन ये समझाया उस साजी को कि भाई ये आप देखो कि ये कितनी मजबूती से अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, और आज से आपको इसके विरुद्ध सारी लड़ाई लड़नी है। आपको कितना कठिन काम है ये आप समझना। हमको ये थोड़ी कहना है कि उनका कोई योगदान नहीं है, कि वे कुछ नहीं है, वो विश्व क्या समझते थे। हमको पंडित जी के बारे में हमको कुछ भी शिकायत नहीं है, और उनने तो हमारे पास भेजा था, हमारी शिकायत कैसे हो सकती है, बोलिए। और वो चीज जब से हम कहते आ रहे हैं समय समय पर, फिर आज भी गत वर्ष भी और इस साल भी देख लेना, अभी इतना कह रहा हूं सबके सामने, तब भी देख लेना कि हम तो रविन्द्र जी का अनंत अनंत उपकार मानते हैं कि उनने हमें प्रेरणा देके यहां भेजा। अब वो भजन किस पे कहां कितना दे रहे हैं, मैं कोई रविन्द्र जी या भगवान दास जी, इन दोनों के प्रति मेरे बहुत अच्छे भाव हैं, बहुत पक्के आत्मार्थी हैं वे लोग, और वो हमारे पास लोगों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, इससे बढ़िया और अनुकूलता क्या हो सकती है, बोलिए। लेकिन हम निमित्त उपादान के स्वरूप को समझने के लिए ये बात कह रहे हैं, आप समझे ना, मैंने उसमें कोई परिवर्तन करने के लिए ये बात नहीं कह रहे कि उसका उल्लेख नहीं किया जाए, लेकिन उस उल्लेख में भी अनुपात तो होता है ना। सारी जिंदगी गुरुदेव श्री उपादान की महिमा समझाते रहे और निमित्त को नकारते रहे, क्यों। और हम जब बोलते हैं भगवान महावीर की कहानी में, तो सबसे अच्छा पॉइंट हमको वो ही लगता है कि वो शेर की पर्याय में आकाश से उतर के मुनिराज आए और उन्होंने कहा हे मृगराज, क्या वो ही हमको सर्वोत्कृष्ट लगता है क्या। अब वहां तो बहुत और ज्यादा बाहरी निमित्त है नहीं, लेकिन आगे के 9 भव लगे ना, तो उसमें बहुत बहुत प्रसंग ऐसे आए हुए ना निमित्त आदि के भी, जो जो भी कार्य हुए होंगे वो आए होंगे कि नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में भी वही चढ़ा हुआ है, उसी का चित्र हमने यहां लगाया है और बाहर के किसी का नहीं। उन्होंने दीक्षा ली होगी, उनके गुरु रहे होंगे, उन्होंने तरकारी रूप समझाया होगा, क्या सब किया होगा ना, नहीं रहे होंगे क्या, लेकिन वो आचार्य ने भी नहीं लिखा, और हमारे को भी वहां ध्यान नहीं जाता है, बस सीधा वहां से हुआ खत्म, और सीधे बस महावीर हुए मुख चले गए, बस हो गया काम। गुरुदेव श्री फरमाते थे कि व्यवहार निमित्त ये बरसात में बिना बोए और बिना खाद पानी दिए जगह जगह उग जाने वाली घास के समान है, ऐसा कहते थे। उसके लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि उसके विरुद्ध बहुत किया गया। खेत में हमने अनाज बोया तो एक पेड़ तो अनाज का लगा, पेड़ में पौधा, और उसे घास 10-20 पौधे गांव के घास के हो गए बिना बोए। और हमने 10-20 पौधे को उखाड़ के फेंक दिया, उसे निराई बोलते हैं ना, तो एक पौधे को रखा, क्योंकि ये 10-20 पौधे उसकी उसकी खुराक को खा जाएंगे। क्यों? लेकिन उस घास से निजात पाना इतना आसान नहीं है। एक घास का नाम है बारहमासी, नाम सुना कभी? वो बारहमासी माने क्या कि वो 12 महीना हरी रहती है। वो वनस्पति ऐसी है कि 12 महीना हरी रहती है। ये तो फिर भादों में ठीक रहेगी, फिर कुंवर में मुरझा जाएगी, बाकी सब ऐसी होती है ना। और वो आपकी दीवाल में जरा शांत हो और वहां उसका बीज उपट के लग जाए तो वो वहां उग जाती है। फिर कोई दुनिया की ताकत वहां से उसे उखाड़ नहीं सकता है। फिर उखाड़ोगे तो फिर उग आएगी, फिर उग आएगी, फिर उग आएगी। और पानी नहीं दो, कुछ नहीं दो, कुछ भी नहीं करो, वो तो पनपती ही रहती है दीवारों में, इसमें उसमें। आप सब देखे ना कैसी कैसी घास उग जाती है, नहीं आती है। तो ऐसे ये व्यवहार निमित्त गुरुदेव बोलते थे बरसाती घास के समान है कि बिना प्रयत्न के इतना उगता है। और अपने उपादान की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। अब इन गाथाओं की भी यही समस्या है। अब वो बार बार कह रहे हैं और ऐसा भी कह देते हैं जैसे कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है, लेकिन अंत में तो इतनी कहनी पड़ती है ना कि उसके निमित्त से बस उतना मिल जाए हमारे लिए पर्याप्त है, हमारे अज्ञान की स्वच्छ करने के लिए। देखो पढ़ते हैं जरा इसे। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि यद्यपि जीव के रागादि भाव कारमान वेगणा के रूप में प्रणमन में निमित्त हैं, कारमान वेगणा कर्म रूप से प्रणमन में रागादि भाव निमित्त हैं, तथा कर्म का उदय जीव के आगामी रागादि भाव होने में निमित्त है, तथापि जीव का रागादि भाव रूप प्रणमन पूर्णता जीव का ही है, अकेले जीव का ही है, उसमें कोई हिस्सेदारी उसकी नहीं है, 0% भी नहीं। 50% रखनी पड़ी, तुम धमके 0% हम रखने को जाने को तैयार नहीं है। और है नहीं, ऐसा नहीं कि हमको इससे हमारा बैर विरोध हो गया इसलिए हम ये कह रहे हैं। तथापि जीव के आगे हो गया, उसमें कर्म का कुछ भी नहीं है, कितना स्पष्ट लिखा इसलिए। उसी प्रकार कारमान वर्णना का कर्म रूप प्रणमन पूर्णतः पुद्गल का ही है, अकेले पुद्गल का ही है, उसमें जीव का कुछ भी नहीं है। मैंने ये समझाना इसका उद्देश्य है, बस समझ लीजिए आप हैं? अज्ञान की ताकत देखी ना आपने, जरा नाम तो मिल जाए उसका, निमित्त निमित्त बस खत्म, फिर बस बस वो सब तुम्हारा कहना कितना खोल खोल के कहना सब एक तरफ रखा रह जाएगा। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अब देखो मैं आत्मख्याति को पढ़ता हूं, संस्कृत टीका का बिल्कुल प्योर हिंदी अनुवाद है, सरल से सरल भाषा में, इसमें कॉमा फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है। जिनको रस हो वो संस्कृत टीका से मिलान करके देख लें, ख्याल में आई ना। अभी देखिए इसमें कितना जो मैंने आपको बताया है उस दृष्टि से इसके अर्थ समझने की कोशिश करना, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। राग आदि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत उद्यागत पुद्गल कर्म के साथ ही दोनों एकत्र होकर ही रागादि अज्ञान परिणाम होता है। यदि कोई ऐसा कहे तो ये एक आचार्य अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये तो अज्ञानी की तरफ से कह रहे कि दोनों ने मिलकर ही किया, दोनों ने मिलकर ही किया है। कल उदाहरण दिया था ना, कि बेटा तो माँ बाप का दोनों का मिलके ही है। और ये कहा था क्या कह रही कि नहीं नहीं बाप का बिल्कुल नहीं है, माँ का ही है। बाप तो निमित्त मात्र है, खाली नहीं ना। वो ये नहीं कह रहे हाँ दो ही मिलके साथ, ये अच्छा समझौता हो गया दोनों दोनों के हो गए। अब ये कह रहे तुम्हें क्यों ऐसा कहते हो गए, नहीं नहीं माँ का ही है बेटा। और वो हमने इतना निमित्त को महत्व दिया जो जीरो नहीं है कि हमने सब पूरी जगह उसके बाप का ही नाम लिखा, बाप का ही गोत्र लिखा, बाप की संपत्ति लिखा, बाप के ही सब गांव का नाम लिखा। वो माँ को बिल्कुल ही जीरो कर दिया है? देखो रागादि अज्ञान परिणाम के निमित्तभूत उद्यागत पुद्गल कर्म के साथ ही दोनों एकत्र होकर ही रागादि अज्ञान परिणाम होता है। कोई ये कहे यदि ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो, ये आत्मखापी में लिखा है अमृतचंद ने, तो जिस प्रकार मिले हुए चूना और हल्दी का लाल परिणाम होता है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल कर्म दोनों के रागादि अज्ञान परिणाम की आपत्ति आ जाएगी। देखो ये जो उदाहरण दिया है ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। ये बितरे की उदाहरण है, माने चूना और हल्दी मिलकर के लाल रंग हो जाता है, ऐसा ही जीव कर्म का हो जाता, ये नहीं बताना है। ऐसा कर्म का और जीव का नहीं होता है, ये बताना है। क्या कह रहे हैं अब अपन कह बराबर दिमाग में आ गया, हमें तो बिल्कुल चूना का और हल्दी का, चूना का और हल्दी का बराबर है, वैसा ही है, वैसा नहीं है। इतनी इतनी कठिनाई है तो उन्होंने जैसा है वैसा क्यों ना बता देते। ऐसा उदाहरण दुनिया में कोई है ही नहीं। वितरय की उदाहरण जब दिए जाते हैं तो अन्वय नहीं मिलता है, आया समझे? ये नियम है न्याय शास्त्र का, वितरय की का नंबर तो दो पर है। अन्वय के साथ वितरय दे दे में वो अलग बात है, लेकिन अन्वय ना देवे और वितरय की देवे, ये तो अन्वय कहीं बैठता ही नहीं है। तब जैसे कि माँ कैसी होती है, क्या मामी जैसी, मौसी जैसी, नानी जैसी, दादी जैसी, कोई उदाहरण नहीं है जगत में। लेकिन जैसे दादी अपनी माँ अपनी है, अपनी वैसे ही नानी नहीं, इसके लिए उदाहरण देंगे, इसके लिए नहीं देंगे है के रूप में, क्योंकि है का तो कोई जोड़ा ही नहीं है। तो अंत में कहना पड़ा कि माँ सिर्फ माँ जैसी ही होती है, वो अद्वितीय है, उससे किसी की उपमा इस जगत में नहीं दी जा सकती है, वो अनुपमेय है। अब कोई उपमा है ही नहीं जगत में, तो अब हम उपमाएं खोजेंगे तो हम कहेंगे जैसे सौतेली माँ ने उसे पाला, पूरी बिल्कुल माँ जैसा ही पाला, वैसे ही जीव ने कर्मों को पाला, ऐसा नहीं कह सकते। पॉजिटिव तो कोई उदाहरण है ही नहीं, लेकिन नेगेटिव भी कोई उदाहरण आप नहीं बना सकते हैं। क्या देखो परंतु रागादि अज्ञान परिणाम तो एक जीव ही जीव के ही होता है, मैंने जीव ही क्या है, वो पुद्गल मुद्गल किसी की हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि जीव के रागादि अज्ञान के परिणाम का निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है, उस निमित्त से भी भिन्न ही है। कितना क्लियर लिखा है, और ये बिल्कुल इसको बहुत सावधानी से लिखा गया है। आप संस्कृत पढ़ने जानते हैं कि उसमें कहीं इसमें कसर नहीं है, कि निमित्त तो है। हाँ भाई निमित्त तो है, भाई निमित्त इतना कह दे बस वो अपने अज्ञान को पुष्ट कर लेता, क्या करे, कोई नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, है? इसमें एक बात बीच में ही बता दूं, इसमें जो है ना हल्दी और चूना, तो संस्कृत में सुधा हरिद्रा ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? सुधा हरिद्रा, कि सुधा और हल्दी, हरिद्रा माने हल्दी, तो सुधा और हरिद्रा मिलकर लाल होता है। ये भी नेगेटिव दिया है, क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिव मिलता नहीं है, समझ गए ना। अब इसमें सुधा का क्या अर्थ है? तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने, पढ़ो पीछे लिखा है सब, इसका अर्थ है, सुधा का अर्थ क्या किया है, फिटकरी। देखो देखो नीचे पढ़ो पेज नंबर 222 सबसे नीचे का पैरा, आत्मख्याति के मूल में मूल शब्द सुधा है, जिसका अनुवाद पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने फिटकरी किया है। अब आप चिल्लाएंगे कि आपने फिटकरी नहीं किया और आपने क्यों ना किया, ये झगड़ा खड़ा हो सकता है ना, इसलिए ये बात सब लिखी है, क्या समझना, क्या क्या है लिखा ना। देखो आत्मख्याति में मूल शब्द सुधा है, जिसका अनुवाद पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने फिटकरी किया है, और सहजानंद बर्नी ने भी फिटकरी किया है। सहजानंद जी बर्नी का नाम सुने, मनोहरा जी बर्नी थे, उनने शब्द दशांगी टीका लिखी। जब यहां मतभेद आता तो हम सबको देखते हैं, और मेरे ऑफिस में देखें सारी किताबें रखी हैं विरोधी से विरुद्ध की भी, और उनने दोनों फिटकरी किया है, जबकि अन्यत्र चूना किया गया है, वह सब जगह चूना, दो जगह फिटकरी। अब तो अपने जयचंद छाबड़ा पढ़ते हैं तो अपने फिटकरी पढ़ेंगे, क्यों अपन तो वही है, पढ़ने में तो वही आए ना। अब और हजार जगह चूना किया हो वो हमने पढ़ने में नहीं आया। शब्द कोश में भी चूना ही पाया जाता है, वहां फिटकरी नहीं पाया जाता। डिक्शनरी में देखो, डिक्शनरी में देखो भाई क्या अर्थ है इसका, तो वहां भी क्या लिखा है, सुधा का अर्थ चूना, समझे ना। फिटकरी प्रयोग देखने पर पता चल, प्रयोग करके देखने पर पता चलना चला कि चूना और हल्दी के मिलाने से जैसा लाल रंग होता देखा जाता है, वैसा फिटकरी और हल्दी के मिलाने से नहीं है। अब ये समझे क्या क्या किया हुआ है, क्या चले, हमने चूना और हल्दी मिलाई और हमने फिटकरी और हल्दी मिलाई, तो चूना और हल्दी से जैसा लाल रंग बना, फिटकरी से और हल्दी से वैसा लाल रंग नहीं बना, उसे लाल नहीं कहा जाता, गुलाबी टाइप कुछ अलग बना, मतलब उसमें पूरी तरह से वो आई नहीं, समझे ना। देखो लिखा ना हल्दी, शब्दकोश में भी चूना का अर्थ पाया था, फिर प्रयोग करने पर देखने पर पता चला कि चूना और हल्दी के मिलाने से जैसा लाल रंग होता देखा जाता है, वैसा फिटकरी और हल्दी के मिलाने से नहीं। अतः हमने भी यहां सुधा का अर्थ चूना ही किया है। अब एक लिखने की जरूरत नहीं थी, हम देख के चूना लिख देते उसका, लेकिन अभी आपने तो बस दूसरा किताब आपके हाथ में है ना, झगड़ा खड़ा हो जाया, देखो उनने फटकरी किया, ये चूना करते हैं, आता तो कुछ है नहीं, सब सत्यानाश करके रख दिया। अरे तो चूना लिखने के पहले और फटकरी लिखने के पहले हमने उसमें कितना सोचा है, कितना देखा है, कितना विचार किया है, डिक्शनरी देखी है और उन्हें मिला के देखा और उन शस्त्रों में देखा, तो हमने आखिर जयचंद छाबड़ा का जो वजन हमारे माथे पे था इसलिए इतनी रिसर्च की गई। जयचंद छाबड़ा नहीं लिखते और कोई दूसरे लिखते तो अपन परवाह ही नहीं करते, क्योंकि हमारे पास मिलाने को तो दो ही हैं, और तो अपने पास मिलाने को कुछ है ही नहीं, कहीं कौन से देखने की आपको जरूरत ही महसूस नहीं होती है। आचार्य जयसेन भी तात्पर्य वृत्ति में हल्दी और चूना के उदाहरण से ही बात स्पष्ट करते हैं। देखो जयसेन ने लिखा हल्दी और चूना है ना, अब तो जयसेन तो जयचंद से बड़े हो गए ना क्या। हाँ, एक बात तात्पर्य वृत्ति में विशेष जानने योग्य है जो इस प्रकार है। मैं तात्पर्य वृत्ति में इतनी बात है, लेकिन एक खास बात है जो आत्मख्याति में नहीं है, वो तात्पर्य वृत्ति में है। वो क्या है उसे अपन पढ़ लेते अभी अभी के साथ में, फिर पीछे के पीछे अपन चलेंगे वहां। यह जीव अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्मों का करता है और अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव कर्मों का करता है। यद्यपि जीव को द्रव्य कर्मों का कर्ता कहने वाले अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा यहां अशुद्ध निश्चय नय नाम पाता है, तथापि शुद्ध आत्म द्रव्य को विषय बनाने वाले शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा वह वस्तुता कौन अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार ही है, यह भावार्थ है। अब जो नए चक्र पड़े हैं जरा बोलो देखना के क्या लिखा है, उपचरित अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। तो इसको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय क्यों लिखा, द्रव्य कर्मों का जो कर्ता लिखा उसमें अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय क्यों लगाया, सोचना अपने मन में। क्योंकि अपन ने असद्भूत व्यवहार नय के दो भेद किए, नए चक्र में और समय सार में नहीं। तो पहली बात तो यह है कि पर दो द्रव्यों के बीच में संबंध बताना उसका नाम असद्भूत व्यवहार नय है। दो द्रव्य होना चाहिए, इसलिए अपना आत्मा शरीर स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव दुनिया, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसका नाम क्या है, असद्भूत व्यवहार नय। अब इसके दो भेद करें, एक किया उपचरित असद्भूत और एक कहा अनुपचरित असद्भूत। तो अकेले शरीर के साथ संबंध को असद्भूत अनुपचरित माना और बाकी स्त्री पुत्र मकान जायदाद सबको उपचरित माना, तो इसका हेतु क्या है कि उसमें लिखा है कि संश्लिष्ट संबंध और असंश्लिष्ट संबंध, जिन दो द्रव्यों के बीच में संश्लिष्ट संबंध है उनको मानना अनुपचरित और जिनमें संश्लिष्ट संबंध है उनको मानना उपचरित। अब हमारे लिए तो वैसे ही हो गया ना, जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ, ये संश्लिष्ट संबंध क्या होता है असंश्लिष्ट संबंध क्या होता है हम ये भी नहीं जानते। तो जहां जब जीव और पुद्गल दो दिन मिले और वे बिल्कुल एक में एक मिल जाए हो जाए, कैसे कम से एक में एक माने क्या, जन्म से लेके मरण तक एक में एक हो जाए तो उसका नाम असंश्लिष्ट संबंध है। संश्लिष्ट और जीवन भर नहीं हो गए, फिर आए बीच में आए फिर चले गए तो वो दूसरा। तो स्त्री पुत्रादि बीच में आते हैं और चले जाते हैं, वे हमें छोड़ के चले जाते हैं, हम उन्हें छोड़ के जा सकते हैं। तो जिन जिन पदार्थों को हम मरने के पहले ही छोड़ सकते हैं और जन्मने के बाद जो हमारे साथ आए हैं उन सबको हमने उपचरित में डाल दिया, और जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ है, मां के पेट से एक साथ ही आए थे वो आत्मा और शरीर, और मरने तक साथ ही रहेंगे, तो उनको हमने नजदीक का संबंध मान लिया, नजदीक और दूर का, और उसको हमने क्या रख दिया अनुपचरित असद्भूत। तो शरीर के साथ संबंध हो गया अनुपचरित असद्भूत। अब ये सवाल है ज्ञान वर्णादि कर्मों के साथ में इनमें से कौन सा माने दो में से, हमारे विद्यार्थी तो लगभग सब समझते हैं, बाकी लोग ध्यान से सुनना कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बताए ना, जिनका वियोग नहीं हो उनको हमने सुन लिया। तो ज्ञान वर्णादि जो कर्म है वो कारमान शरीर है, तो जब औदारिक शरीर को हमने अनुपचरित असद्भूत में रखा तो कारमान शरीर को हम इसी में क्यों नहीं रखेंगे, वो भी तो एक शरीर है ना, आप ही समझ रहे हैं। और वो जीव से पुद्गल के वाले जो ये शरीर है इससे ज्यादा लंबा है, ये तो जब मां के पेट से आया था जब ही साथ में था, वो तो उसके पहले भी साथ में था, और ये तो मर जाओगे तो यहां साथ छूट जाएगा, ये तो बाद में भी साथ जाएगा। इसलिए कर्म के साथ में चाहे कर्ता कर्म का संबंध बताएं, चाहे एकत्व का ममत्व का संबंध बताएं, चाहे भोक्ता का संबंध बताएं, सब कौन से लय में जाएगा। उपचरित असद्भूत व्यवहार में यदि 3-4 दिन का समय मुझे दे दो तो मैं एक एक बच्चे को ये सब नए रटा दूंगा, बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा। तो क्या बात आप समझे ना, तो ये अब कर्म का कर्ता आत्मा है तो कौन से नए से कहा जाएगा। तो अनुप्रेरित सद्भूत व्यवहार नए से, देखो अभी पढ़ता हूं जयसेना आचार्य का, कौन बीच में बोल रहा है, यह जीव अनुप्रेरित असद्भूत व्यवहार नए से द्रव्य कर्मों का करता है। समझ गया ना, जो क्यों बता दिया ना मैंने। और यदि अशुद्ध नए से रागादिक भाव कर्मों का करता है, अब ये अपनी जो पर्याय है पर द्रव्य की नहीं, और उसका करता कहना वो निश्चय नहीं है। तो अशुद्ध पर्याय से अभेद बताना तो अशुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध पर्याय से भेद बताना तो शुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय से अभेद बताना तो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, वो तीनों से ही भेद बताना वो परम शुद्ध निश्चय नहीं, इसीलिए सत्य न्याय है। अब वो ये कह रहे हैं कि इतने जो शास्त्रीय भाषा है इसके हिसाब से जीव का और शरीर का ये संबंध है, हमने आपको बता दिया। जैसे आप कहते हैं भाई साहब भाई साहब भाई साहब कहते हो, फिर ये भी कहते हो कि हम तो अकेले ही हैं, हमारे तो कोई भाई माई है ही नहीं है, कि चचेरा के चचेरा भी नहीं है, कि ममेरा के ममेरा भी नहीं है, तो ये कहां से आ गया क्या? तो कहा कि हमारे भाई का दोस्त है, कि दोस्त का भाई है, मेरे मामा का दोस्त है इसलिए मामा है, कि आप समझे ना कि मेरे दोस्त का मामा है इसलिए मामा है, इसके लिए है, तो ऐसा लगाएंगे, ये अपेक्षाएं लगती हैं कि तुमने कैसे कहा आगे ना। फिर पढ़ता हूं, देखो सुनना आप ध्यान से, यह जीव अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से द्रव्य कर्मों का करता है, और अशुद्ध निश्चय नए से रागादि भाव कर्मों का करता है। यद्यपि जीव को द्रव्य कर्मों का कहता कहने में अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नाम पाता है, क्योंकि वो अशुद्ध उसको भी निश्चय नहीं से अशुद्ध निश्चय नहीं भी कह देते हैं राग आदि वाले को, क्योंकि उसी की पर्याय है ना वो जीव की। देखो बहुत बारीक भेद है, राग का कर्ता आत्मा है ये सद्भूत उपचरित व्यवहार नए है, और आत्मा राग है ये अशुद्ध निश्चय नए है। जब भेद का कथन करेंगे तो व्यवहार हो जाएगा, और अभेद करेंगे तो निश्चय हो जाएगा, क्योंकि भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय, ये सब बातें गुरुदेव जी ने निकाली थी, उनके ज्ञान में सब थी पक्की। ऐसा नहीं समझना कि गुरुदेव जी ने नहीं पढ़ा था नए चक्र, ऐसा कुछ नहीं है। तथापि शुद्धात्म द्रव्य को विषय बनाने वाले शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा वह वस्तुतः व्यवहार ही है, यह भावार्थ है। ये तात्पर्य वृत्ति में संस्कृत में है, ये भावार्थ अपने उसे हिंदी करके रखा है। उक्त कथन में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात तो यह कि यहां जीव को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से द्रव्य कर्मों का कर्ता कहा गया है, क्योंकि जीव और शरीर के से संश्लिष्ट संबंध होने से जीव का शरीर के साथ एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बताने वाले नए को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए कहते हैं, और द्रव्य कर्म कारमान शरीर रूप ही है, अतः उनका कर्ता जीव को बताना भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए का ही कार्य है। मुदारिक शरीर को बताना और कारमान शरीर को बताना दोनों में एक ही नए लगेगा, ये तो बहुत बारीक है और बहुत स्थूल है, कुछ होगा इससे कुछ मत देख, हमारे तो एक खाता है तो जो उसी खाते में जाएगा। दूसरे यहां शुद्ध निश्चय नये से अशुद्ध निश्चय नये को व्यवहार बताया गया है कि शुद्ध निश्चय नये होता तो उसकी अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नये को व्यवहार कहते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि पंचाध्यायी आदि ग्रंथों में परम शुद्ध निश्चय नये को ही नयाधिराज कहा गया है और उसकी अपेक्षा शेष सभी नयों को एक अपेक्षा व्यवहार कोटि में ही डाला गया है। अशुद्ध निश्चय नये, एक देश शुद्ध निश्चय नये और साक्षात शुद्ध निश्चय नये सब व्यवहार, ये पंचाध्यायी की शैली है। अभी इतना अंतर समझ में आए अभय जी की क्लास में बैठो और क्या नाम संजीव गोधा जी में बैठो तो मालूम पड़ेगा कि पंचाध्यायी के नये क्या है और ये समय सार के नये क्या है। तो आप कहते इसे समय सार के क्यों कहते हो, इन्हें नये चक्र के नये कहो और उन्हें पंचाध्यायी के नये कहो, तो ऐसा कहने में क्या फर्क पड़ेगा बोलो आप। क्योंकि कुंद कुंद बहुत बड़े आचार्य थे और उनके सामने पंचाध्यायी के लेखक बहुत छोटे थे, तो वे कहीं खड़े ही नहीं रह पाएंगे क्या, समझे ना। तो वो कहते हैं आप ऐसा क्यों कहते हो कि मूल धारा ये है, वो पंचाध्यायी वाली धारा मूल धारा नहीं है। तो इसके लिए हमने बहुत माथा मारा कि हमको पास कोई ठोस कारण होना चाहिए, नहीं ये कहेंगे पंचाध्यायी का देते हैं और तुमने अपने नए चक्र में इनको व्यवहार का बताया, हमसे 4 साल 700 साल पुराने और हमसे बड़े हो जाएंगे तो हमारी बात छोटी हो जाएगी, समझ जाएंगे क्यों समझ जाएंगे नहीं आए। बात तो यही सही है, कालिदास ने तो ये कह के काम निपटा लिया कि पुराण मित्तैव न साधु सर्वम, सब चीजें पुरानी अच्छी नहीं होती और सब चीजें नई बुरी नहीं होती। ऐसी बातें तो ना समझ लोग करते हैं कि पुरानी है तो बढ़िया हो जाए, नई है ये कोई नापने का तरीका है। बुद्धिमान लोग तो उन्हें कहते हैं कि जो वस्तु के देखकर निर्णय करें कि कौन सच्ची है और कौन झूठी है, नई और पुरानी के हिसाब से निर्णय नहीं करें। लेकिन कौन मानने वाला है हमको 400 वर्ष बाद का गिनेगा, हम उनको 400 वर्ष पहले का, तो वे जीते ही जीता है। तो हमने निकाला खोज के कि ऐसा लिखा है नए चक्र लिखने वाले ने कि मैं ये नयों का वर्णन कुंद कुंद आदि आचार्यों के शास्त्रों में कथन किए गए प्रयोगों के आधार पर बनाया है, मैंने ऐसा लिखा है। नए चक्रकार ने, देवसेन ने, माइल धवल ने, सब जानते थे कि हम नहीं टिके, आप समझिए ना। तो उन्हें समय सार आदि ग्रंथों का सार लेकर के हमने ये नए चक्र बनाया है और ऐसा लिख देने से थोड़ी काम चलेगा। तो हम कदम कदम पर प्रयोग से हमने वो बात सिद्ध की है, देखी है कि ये बराबर समय सार के आधार पर है कि नहीं है। देखिए पंचाध्यायी तो कहते नए ही नहीं है, शरीर को, स्त्री को, पुत्र को, मकान को अपना कहने वाला कहता कि नहीं है, वो नए ही नहीं है। लेकिन समय सार में साफ लिखा है व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो हवदि खलु एको नदु निश्चय न जीवो देहो भी कदापि कठो। अब देखिए कुंद कुंद कह रहे हैं ना क्लियर है? तो एक दो जगह नहीं, 25 जगह क्या नगर की स्वच्छता देखकर राजा का माना जाता है ना कि अच्छा राजा है और खराब देख करके राजा की निंदा होती है। तो नगर की क्रिया का कर्ता राजा को माना, जबकि यदि सफाई का कर्ता तो राजा नहीं है, कौन है वो मैं अपनी भाषा में बोलना नहीं चाहता हूं। अब समझो तो सफाई करने वाला कौन है कि सफाई करने वाला सफाई करने वाला है क्यों, लेकिन वो हमारे सामने खड़ा कहां रहेगा। तो कहते हैं कि व्यवहार से उस राजा को उस गंदगी और सफाई का जिम्मेवार माना जाता है। नगर वर्णन देखकर जैसे राजा को महान माना जाता है, वो खराब देख करके अच्छा माना जाता है। तो ऐसी कई गाथाएं हैं कि जो पंचाध्यायी के नियमों से मेल नहीं खाती हैं समय सार की, और नए चक्र के नियमों से मेल खाती हैं। और वो नए चक्र माने पंडित हुकुमचंद नहीं, नए चक्र माने माइल्य धवल, नए चक्र माने देवसेनाचार्य। ख्याल नहीं ना, इनने लिखी देखो। उक्त कथन में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात तो यह है कि यहां जीव को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से द्रव्य कर्मों का कर्ता कहा गया है, क्योंकि जीव का शरीर से संश्लिष्ट संबंध होने से शरीर जीव का शरीर के साथ एकत्र महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बताने वाले नए को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए कहते हैं। अब वहां हमने आपको लिख दिया निकाल निकाल की, तो आपको थोड़ी अंदाजा लगता है कि उसके पीछे हमने कितनी मेहनत की है देख करके। जब वो तो लिखी नहीं जाती पूरी, वो तो अभी बता दी, वहां तो हम लिख देंगे कि ए है खत्म। और दिव्यकर्म कारमान शरीर रूप ही है दिव्यकर्म, अतः उनका कर्ता जीव को बताना अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का ही कार्य है। ठीक है, एक बात तो ये है नक्की। दूसरी बात, दूसरे यहां शुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध निश्चय नय को भी व्यवहार बताया गया है। तो यह तो आप जानते ही हैं कि पंचाध्यायी आदि ग्रंथों में परम शुद्ध निश्चय नय को नयाधिराज कहा गया है, और उसकी अपेक्षा शेष सभी नयों को एक अपेक्षा से व्यवहार की कोटि में डाल दिया, पर वो नयाधिराज है, वो सम्राट है, पर असली तो वही है और बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो उपचैत कथन है। क्या कुंद कुंद ने कोई ऐसा नयाधिराज ऐसा कुछ नहीं कि बनाया किसी को? शुद्धात्म द्रव्य को विषय बनाने वाले शुद्ध निश्चय नय को ऐसा कहकर आचार्य जयसेन यहां शुद्ध निश्चय शब्द का प्रयोग परम शुद्ध निश्चय नय के अर्थ में ही कर रहे हैं। अभी आपको निर्णय करके निकालना पड़ेगा, आप शुद्ध निश्चय नय कहें और वो एक देश शुद्ध निश्चय नय या साक्षात शुद्ध निश्चय नय को निकालने तो नहीं बनेगा, क्योंकि दृष्टि के विषय भूत शुद्धात्म द्रव्य यानी परम शुद्ध निश्चय नय का ही विषय है। यद्यपि नए चक्रादि ग्रंथों में चार प्रकार के व्यवहार नये और चार प्रकार के निश्चय नये बताए गए हैं, और समय सारादि ग्रंथों में प्रयोग भी तदनुसार ही पाए जाते हैं, क्योंकि नए चक्रकार स्वयं लिखते हैं कि हमने यह ग्रंथ समय सारादि ग्रंथों का आधार लेकर ही बनाया है, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है उसने। तथापि शुद्धात्मा तक ले जाने के लिए नयाधिराज परम शुद्ध निश्चय नय को ही निश्चय नय बताकर शेष को व्यवहार कहने की पद्धति भी अध्यात्म में पाई जाती है, इस बात का प्रबल प्रमाण आचार्य जयसेन का उक्त कथन है। क्यों कि पांडे राजमल जी इस वक्त पैदा नहीं हुए थे जब ये आचार्य जयसेन ने लिखा, वो 700 वर्ष पुराने हैं और ये 500 वर्ष पुराने हैं। तो मतलब ये है कि उनकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन ऐसी एक धारा उन्हें चल रही थी। मैंने जो पंचाध्यायी की है वो धारा भी कहीं कहीं थोड़े रूप में चल रही थी। ये है, यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि विभिन्न प्रकाशनों में उक्त चार गाथाओं के क्रम में अंतर देखने में आया है। ये है ना, चार गाथाएं अपन ने पढ़ी, इन्हें एक कोई नीचे कोई ऊपर है, ऐसा एक सी नहीं मिलती है, अलग अलग मिलती है, क्रम में फर्क है। क्या फर्क है? यहां हमने जो क्रम दिया है वह आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति में तो है ही, साथ ही आत्मख्याति की जो भाषा टीका जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी है उसमें भी यही क्रम है, तथा सहजानंद वर्णी की सब प्रतिसांगी टीका में भी यही क्रम है, किंतु सोनगढ़ घबराना नहीं अब और जयपुर से प्रकाशित समय सार में ऊपर की दो गाथाएं बाद में हैं और नीचे की दो गाथाएं पहले हैं। अभी अंतर देखने में आता है, मैं पता जो सामने किताब है उसमें देखते रहते, लिखते जाओ, कहा झंझट में पढ़ना। गाथाओं के अर्थ पर ध्यान देने पर भी परिवर्तन का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि उसके आगे पीछे रखने से कोई भाव में अंतर नहीं पड़ता। आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति में एक रूपता रहे, इस भावना से हमने छावड़ा जी के क्रम को ही रखना उचित समझा है। देखो वहां छावड़ा जी का नहीं रखा, सुधा माने फिटकरी, वहां पर हल्दी रखा और यहां छावड़ा जी का रखा, तभी कोई पक्षपात नहीं है। हमने तरक्की कसौटी पे कसके देखा और अभी निर्णय लिया, हम ये तो हमारे हाथ में है, किसको आगे पीछे रखें। तो हमने अपने किस विवेक से उसके पीछे क्या क्या थिंकिंग है जो उसे आगे पीछे हमने रखा है, वो बात सब इसमें है। नहीं तो आप माथा मारते रहना, क्यों रखा क्यों रखा क्यों रखा, ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया। अब उस वक्त भी हमसे तुम पूछोगे हम नहीं लिखेंगे, तो जब हमने इसका मंथन किया तब तो हमें ये सब बातें याद थी, और अब तुम कभी भी पूछो एकदम रास्ते में रेल के डब्बे में तो हमें थोड़ी वो याद है, इसमें देख लोगे तो हो जाएगा। क्योंकि जब जिस गाथा पर लिखते हैं उस वक्त जितनी गहराई से उसके स्टडी करते हैं और सब चीजें देखते हैं, वो 24 घंटा उपस्थित थोड़ी रहती हैं। ये तो है ही कि हमने ऐसा क्यों लिखा, ये भी भूल सकते हैं कि हमने क्या लिखा, ख्याल में आई ना। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि देखो तो किताब लाओ, फिर हम उसे देखेंगे तब हम जवाब देंगे। पहले में पंडित जी इतने से प्रश्न का जवाब नहीं आप कर, अरे भाई गैर जिम्मेवारी से जवाब देना हो तो उसमें कुछ भी कह दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जयपुर में कितने कौए हैं बताओ, कोई बता सकता हो तो बताओ, जयपुर में कितने कौए हैं ये बताने के लिए साहब इसमें क्या कठिन प्रश्न है, तो बताओ ना। यदि आपको सत्य बोलना है तो कौओं की गिनती करानी पड़ेगी, और वो इतना आसान नहीं है। जैनियों की गिनती तो हम आज तक करा नहीं पाए, वो गवर्नमेंट कह देती है तुम 45 लाख, तो हम 45 लाख मान लेते हैं, हम 1 करोड़ कह देते हैं, 1 करोड़ मान लेते हैं, कौओं की कैसे कराएंगे है? तो आपको क्या कहना पड़ेगा, भैया हमें पता नहीं, यही कहना पड़ेगा ना। और जो झूठों का सरदार है वो कहेगा हम बताते हैं ना, कितने हैं, 5,05,005,625। क्या गलत निकला तो गिनवा लो ना। अब गलत सिद्ध करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, हमारी नहीं है, हम तो आपको बता दिए। यदि ज्यादा कम और ज्यादा निकल जाए तो क्या होगा, तो निकलेंगे ही, क्यों कि जितने मेहमानी में चले गए होंगे उतने कम निकलेंगे, और जितने मेहमानी में आ गए होंगे उतने ज्यादा निकलेंगे, हम क्या करेंगे उसमें। तो मेहमानों को नालक निकाल के फिर गिनती कराओ, फिर गलबड़ निकले तो बताना। वो मिनिस्टर कहता है कि जब हमें बताने के लिए 2 साल लगे, जबकि हमारे पास इतना स्टाफ है, खर्चे करने की पूरी व्यवस्था है, और हम 2 साल में नहीं बता सकते हैं, तो सामने वाले विरोधी दल का 10 साल तक नहीं बता पाएगा, उसके पास स्टाफ कहां है, दफ्तर में उसे घुसने कौन देगा गिनती करने के लिए। इसलिए कुछ भी बोलो, ये राजनीतिज्ञों का सत्य है, समझ आए ना। लेकिन जब 2-2 तरह के कथन सामने आते हैं, तब उन 2 में से हम कौन सा कथन अपनाएं, हमें अपने विवेक से निर्णय करना पड़ता है। और कई जगह ऐसा हो सकता है कि हम किसी निर्णय पर पहुंच भी नहीं पाए। ऐसा लिखा है कि स्त्रियां कितनी हैं, है ना, तो जवाब दिया है 3 गुणा 7 गुणा वा। आज तक के जितने सिद्ध हुए हैं ऐसे कुछ है उनका था, मेरे हूबहू मत मानना, मैं तो अंदाजिया बोल रहा हूं कि वो उनसे 3 गुणी हैं या 7 गुणी, क्या भी ये तो बहुत फर्क है कि 3 गुणी या 7 गुणी, क्यों एक कम ज्यादा बताओ तो चले, आप कैसे कहते हो ये। तो उन्होंने कहा एक आचार्य कहते हैं 3 गुणी है, दूसरे आचार्य कहते हैं सप्तगुणी है, मैं क्या करूं। तो मैंने दोनों ही क्या लिख दिया, त्रिगुणा सप्तगुणा में, क्योंकि मेरे पास गिनती कराने की तो मेरे पास साधन नहीं है, तो शास्त्र के आधार से ही मैं लिखता हूं त्रिगुणा सप्तगुणा वा क्यों। तो उन्होंने कहा कि आप छोड़ दो बात को, आप तो ये बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सच्चा लगता है। ऐसा प्रश्न हमारे बहुत मुमुक्षु करते हैं कि ठीक है आपको बताओ ये सच्ची बात कि किसकी लगती है आपको। मैं फिर किसी के नाम नहीं लेता हूं, नहीं फिर चक्कर पड़ जाएगा, फला ऐसा कहते हैं फला ऐसा कहते हैं, आपको सच्ची बात किसकी लगती है आप तो हमें बता दो प्राइवेट, हम किसी से नहीं कहेंगे। तो उनने लिखा है वीरसेन स्वामी ने कि कौन आचार्य की बात झूठी है ये कहने के लिए मेरी जवान नहीं पड़ती, मेरी जवान किसी को झूठा कहने के लिए उपड़ती नहीं है, क्यों इसमें ज्यादा परीक्षा तो हो नहीं सकती है, गिनती तो हो नहीं सकती है, न्याय का विषय होता है उसमें तर्क युक्ति से हम बात को स्थापित कर सकते हैं, तो वहां पर अपने स्थापित करते ही हैं जहां जिसकी जो अपेक्षा होती है और किस अपेक्षा में ज्यादा ताकत है और किसमें कम है, इसको भी न्याय के आचार्य करते हैं, करुणा नियोग में ये नहीं कर सकता, जो लिखा है हमको वही बता सकते हैं और कुछ नहीं। अब त्रिगुणा और सप्तगुणा लिखा तो हम तो दो ही कह रहे हैं, तो कैसा झूठी बात हो जाएगी, झूठी के प्रचार हो जाएगा, क्या फायदा, क्या बिगड़ेगा तुम्हारे बाप का, त्रिगुणी होने से तुम्हें कुछ कम लगता है, सद्गुणी होगी तो क्या, ये अप्रयोजन भूत बात है, इससे कोई सम्मत दर्शन का लेना देना नहीं, तुम कुछ भी मान लेना, देखना त्रिगुणी या सद्गुणी सम्मत दर्शन में रोक नहीं लगेगी, ये अप्रयोजन भूत बात है, छोड़ो ना इसको, क्या कि जितना है लिखा उनने बता दिया, तुमने सुन लिया, अब ज्यादा माथा पत्ती करने की इसमें जरूरत नहीं है, जितने तुम्हारे माथे में ताकत है यदि तुम्हें कुछ करनी है माथा पत्ती तो मूल तत्व ज्ञान में करो, प्रयोजन भूत जो तत्व है ना कि आत्मा क्या है पर क्या है उसमें लगाओ जितना माथा लगाना हो, पूरी परमिशन आपको है, न्याय की कसौटी पर सिर्फ द्रव्यान योग अथवा अध्यात्म शास्त्र ही कसे जा सकते हैं और बाकी के तीन अनियोग नहीं कसे जा सकते। तो उनका जवाब हम कैसे दें, वे मजाक उड़ाते हैं कि तुम कहते इतना है समीर पर्वत इतना लंबा चौड़ा है, अब तुम्हारे यहां जलनाथ तो बताते तो है नहीं कहां है कहां चले, हम तो सारी चक्कर काट रहे हैं पृथ्वी के दिखते ही नहीं है, क्यों इतनी स्त्रियां हैं इतने पुरुष हैं गिन तो सकते ही नहीं है, तुम ऐसे ठोके जा रहे हो। तो आचार्य कहते कोई चिंता की बात नहीं है, उससे कोई तुम्हारा संबंध है मिथ्या दर्शन का संबंध नहीं है, जानकारी के लिए है तो तुम जानकारी ले लो और नहीं लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तत्व के मामले में यदि गड़बड़ रह गई तो मिथ्यात्व का संबंध उससे है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैं नाम लेके बता सकता हूं, दयानंद सरस्वती नाम सुना, गुजरात के हैं तुम्हारे आर्य समाज के संस्थापक, उनने अपने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में जैनियों की खूब मजाक उड़ाई है और यही ऐसे ही ऐसे मुद्दे उठा उठा कर, तो इनका उपाय क्या है जवाब देने का, क्यों तो इनका उपाय यह है जो हमारे यहां अमित गति आचार्य ने धर्म परीक्षा लिख करके दिया है, क्योंकि उनकी भी मान्यताएं जो हैं इतिहास भूगोल के संबंध में उनमें भी ऐसी ही लगती हैं जैसी अपनी लगती हैं, जैसे तुम गप्पे मार रहे हो ऐसी देवी ऐसी लगती है, तो उनने जो अपनी अपनी घटना पर प्रश्न चिन्ह उठाया उनने उसी टाइप की घटनाएं उनके शास्त्रों में से निकाल कर और रखी कि पहले तुम्हारा ये क्या है बताओ तुम क्या, तो इस तरह से उसका खंडन किया और अंत में लिख दिया भाई इसमें कोई फायदा नहीं है, तुम हमारी काटोगे हम तुम्हारी काटेंगे, इसलिए ये क्या है अछेरा, अछेरा माने इनके बारे में कुछ छेड़खानी मत करो क्योंकि सभी घर में मिट्टी के चूल्हे हैं, समझे ना, इसमें कोई फायदा नहीं है, तत्व की बात करो, उससे हमारा लेना देना है। इस सारे जैन न्याय शास्त्र में तत्व ज्ञान का ही परीक्षण किया गया है, इन प्रथमान योग, करुणान योग, तरुणान योग की बातों का कोई परीक्षण कहीं किया नहीं गया है, न उसकी आवश्यकता है, वो तो हमें आज्ञानुसार ही मानना पड़ेगा।